का था, रूह वही, रूह नया।
मेरी प्यारी लूसी, मेरे पास कोई समाचार तो है नहीं। हम गेस्ट हाउस में रहते हैं और बारिश देखते रहते हैं, और मौसम ऐसा खतरनाक है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते, नाटक देखने भी नहीं। कितने मूर्ख हैं ना वो लोग। माय डियर, वे चित्रांकित मनोरंजन वास्तविक जिंदगी के सूची पत्र होते हैं। ये तमाम आवेग हैं अपरिष्कृत और भारी। चुटकुले तो तोप के गोलों की भांति हैं, जो अपनी राह में आने वाली प्रत्येक वस्तु को तोड़फोड़ कर देते हैं। कोई बुद्धि नहीं, कोई प्राकृतिक नहीं, कोई जिंदा दिली नहीं, और कोई सुंदरता भी नहीं। ये साहित्यिक व्यक्ति वास्तव में समाज के बारे में कुछ जानते ही नहीं। ये पूर्णतया सच्चाई से अनभिज्ञ होते हैं कि कैसे लोग हैं और वो कैसे बातें करते हैं, हमारे बारे में वो क्या संकेत करते हैं। मैं कतई बुरा भी नहीं कहूंगी अगर वो हमारे रीति रिवाजों को तुच्छ समझते हैं और हमारी प्रथाओं को हेय समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी कि उन्होंने उन प्रथाओं और रीति रिवाजों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जब वो हास्यकार होना चाहते हैं तो वे शब्द क्रीड़ा करते हैं जो सैन्य आवास के लिए ठीक होती है, और जब वे खुश होना चाहते हैं तो वे हमें चुटकुले सुनाते हैं जो उन्हें बियर बार्स के बाहर गलियारों में कलाकारों द्वारा बार बार ऑलरेडी सुनाए गए होते हैं। इसलिए हमने नाटक किए। अगर हम दो स्त्रियां होती हैं तो मेरे पति जिद्दी नौकरानी की भूमिका निभाते हैं, और इस क्रम में अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अपनी मूछें कटवा दी। क्या तुम कल्पना कर सकती हो? ओ माय डियर लूसी, मूछें कटवा कर वो कितने परिवर्तित हो गए हैं। अब मैं उन्हें दिन और रात में भी अधिक पहचान नहीं पाती। यदि उन्होंने जल्दी से जल्दी मूछें नहीं बढ़ाई तो मैं सोचती हूं कि मैं शायद उन्हें आगे प्यार नहीं कर पाऊंगी। बहुत डरावने नजर आते हैं। वास्तव में अगर एक मर्द बिना मूछों के रहे तो वो मर्द लगता ही नहीं। मैं दाढ़ी की कोई खास परवाह नहीं करती, वो क्योंकि व्यक्ति को अक्सर अव्यवस्थित स्वरूप देती है। लेकिन एक मूछ, ओह, एक मूछ मर्दाना चेहरे के लिए अनिवार्य है। नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगी कि छोटे बड़े बाल जो ऊपरी होंठ पर होते हैं आंखों को कितना सुकून देते हैं, और मूछ अन्य मामलों में भी काफी अच्छी होती है। मैंने इस मामले में काफी विचार किया है, लेकिन मुश्किल से साहस जुटा पा रही हूं कि अपने विचारों को लिख सकूं। शब्द पृष्ठ पर काफी अलग से नजर आते हैं, और विषय इतना कठिन, इतना नाजुक, इतना खतरनाक है कि इसके साथ न्याय करने के लिए बेहद दक्षता की आवश्यकता है। अच्छा, जब मेरे पति मूछें साफ करने के बाद नजर आए ना, मैं तभी समझ गई थी कि मैं किसी घुमक्कड़ अभिनेता या उपदेश देने वाले किसी भी व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती, यहां तक कि अगर वो फादर डाइडॉन ही क्यों ना हो। कितना आकर्षक है ना वो। बाद में जब मैं अपने पति के साथ अकेली थी तब भी मुझे बहुत बुरा ही लगा। ओह माय डियर लूसी, कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना चुंबन मत लेने देना जिसके पास मूछें ना हो। उसके चुंबन में कोई भी खास वजह नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता, उसमें कोई आकर्षण ही शेष नहीं रहता। परिपक्वता और चटकदार, हां चटकदार, जो कि वास्तविक चुंबन होता है। मूछ तो मसाले जैसी होती है। कल्पना करो कि तुम्हारे होठों पर कोई सूखा या गर्म चमड़े का पत्ता या कोई टुकड़ा स्पर्श कर रहा हो तो। ये उस व्यक्ति का चुंबन होता है जिसकी मूछें ना हो। उसका कोई महत्व नहीं होता, एकदम मूल्यहीन है। मूछ में ये आकर्षण कहां से आता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या मैं स्वयं जान सकती हूं? वो तुम्हारे चेहरे को गुदगुदाती है, तुम उसे अपने मुख पर पहुंचते ही महसूस करती हो, और फिर वहां से एक सनसनी पैर की उंगली के पोर तक नीचे चली जाती है और तुम्हारी गर्दन पर। क्या तुमने कभी भी मूछें गर्दन पर अनुभव की हैं? वो तुम्हें मदोन्मत्त कर देती हैं, तुम्हें रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास जगाती हैं।
ये एहसास तुम्हारी उंगलियों के पोरों तक जाता है। तुम झुरझुरी लेती हो, अपने कंधे हिलाती हो और सिर को पीछे की ओर झटकती हो। तुम अलग हटना चाहती हो और उसी समय वहीं बने भी रहना चाहती हो। ये बहुत आनंददायक है और उत्तेजक भी, लेकिन कितना भला एहसास है।
बिना मूंछ के होंठ का एहसास वैसा ही होता है जैसे बिना वस्त्रों के जिस्म। और किसी को भी वस्त्र तो अवश्य पहनने चाहिए, बहुत कम ही सही यदि तुम पसंद करती हो तो, लेकिन तब भी कुछ वस्त्र तो होने ही चाहिए ना।
मुझे एक बात याद आ रही है जो मेरे दिमाग में करीब 3 महीनों से हलचल मचाए है। मेरे पति जो समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे एक शाम हमारे कृषि मंत्री, जिन्हें हम एम मेलोइन के नाम से संबोधित करते हैं, उनका भाषण पढ़कर सुनाया।
खैर छोड़ो।
हाँ, तो मूछों के बारे में मेरी एक बहुत अलग सी राय है। ये चेहरे को विशिष्ट चरित्र देती है। ये मनुष्य को सभ्य, उदार, हिंसक, अमानुषिक, लंपट और उद्यमी झलक भी देती है। बालों वाला शख्स जो असली मूछ को सफाचट नहीं करवाता, कभी भी परिष्कृत झलक नहीं देता। उसके लक्षण बड़े आंतरिक से हो जाते हैं और जबड़े और ठोड़ी की बनावट विश्वासघात करती प्रतीत होती है। मूछ वाला शख्स अपने अनोखे व्यक्तित्व को बनाए रखता है और साथ ही साथ व्यक्तित्व भी निखरता है। और कितने ही प्रकार की मूछें भी तो देखने को प्राप्त होती हैं। कभी कभार वे घुमावदार होती हैं, घुंघराली होती हैं, नखरीली होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यतः ये सभी प्रकार नारी को समर्पित हैं। कई कभार ये सुई की तरह नोकदार होती हैं, डरा देने वाली। ये प्रकार शराबी, घुड़सवार और युद्ध के शौकीन शख्स को जाहिर करती हैं। कई दफा बड़ी विशालकाय होती हैं, ऊपर आकर पुनः लटकी होती हैं, डर सा पैदा करती हैं। ये बड़ी गुप्त स्वभाव की प्रतीक मूछे हैं। हाँ, दयालुता की द्योतक वो होती हैं जो किनारी पर पतली होती हैं, और सभ्यतापूर्ण मूछें व्यक्ति के जायके और संकोची स्वभाव को दिखाती हैं। लेकिन मैं इन मूछों में जो सबसे ज्यादा बात पसंद करती हूं वो क्या है कि उनका फ्रेंच होना। हाँ, पूरी तरह फ्रेंच होना। ये हमारे पुरखों से चली आ रही है, गॉल से, और ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र का आधिकारिक चिन्ह भी है। ये शेखी, बहादुरी और वीरता का प्रतीक हैं। ये शराब का घूंट भरते हुए उसे बड़ा आकर्षक दर्शाती हैं और जानती हैं कि कैसे परिष्कृत अंदाज में हंसा जाए। लेकिन बड़ी दाढ़ी वाले जबड़े अपने प्रत्येक कार्य में बड़ा अनाड़ीपन दर्शाते हैं। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है जिसने मुझे तमाम दिन आंसू बहाने पर विवश किया, और साथ ही अब मैं देख सकती हूं कि पुरुष के चेहरे की मूछ से भी मैं प्यार करती हूं। ये युद्ध के समय की बात है। तब मैं अपने पिता के साथ रहा करती थी। तब मैं एक जवान लड़की थी। एक दिन चटाऊ के करीब एक मुठभेड़ हुई। मैंने तमाम दिन तोपखानों से की जा रही गोलों और गोलाबारी की आवाज सुबह से शाम तक सुनी, और उस शाम एक जर्मन कर्नल ने हमारे घर में अपना घर जमा लिया। अगले दिन वो चला गया। मेरे पिता को सूचित किया गया कि मैदान में बहुत से मृत सैनिक हैं, वो उन्हें हमारे स्थान पर ले आए ताकि सभी को सम्मिलित रूप से दफन किया जा सके। वे मृत देह पाइंस के एक बड़े से द्वार पर रखी गई, द्वार के दोनों तरफ, और जबकि उनकी गंध बुरी हो जाए, उनके शरीर को जमीन से ढक दिया जाए। और ये तब नहीं हो सकता था जब तक कि गहरी और लंबी खाई न खोद ली जाए। तब इस प्रकार से सिर्फ कोई उनके सिर ही देख सकता था, जो चिकनी भूमि से बाहर निकले हुए प्रतीत होते थे और जो पीले पड़ चुके थे, और उनकी आंखें बंद थी। मैं उन्हें देखना चाहती थी, लेकिन जब मैंने दो कतारों में उनके विभत्स चेहरों को देखा, मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहरहाल, जो भी हो, मैंने अभी और देखना आरंभ किया, एक एक करके, ये अनुमान लगाते हुए कि वे लोग किस तरह के रहे होंगे। वर्दियां भूमि के अंदर समा गई थीं, और तब भी तत्काल हां तत्काल। माय डियर, मैंने फ्रेंच सैनिकों की मूछों की शिनाख्त कर ली। कुछ लोगों ने युद्ध के प्रथम दिन ही दाढ़ी बनाई थी, जैसे कि उन्हें अंत तक आकर्षक बने रहने की इच्छा हो। कुछ लोगों की दाढ़ी एक सप्ताह की थी, लेकिन सभी ने फ्रेंच मूछें रखी हुई थी। सीधे शब्दों में गर्व से भरी मूछें। ऐसा लगता था ये कहती प्रतीत हुई, मुझे अपने दाढ़ी वाले मित्र से अलग न ले जाना। छोटा हूं पर मैं फिर भी भाई ही हूं। और मैं रो पड़ी। ओह, मैं रोई, इतना रोई जिसकी कोई सीमा नहीं। यदि मैं उन्हें पहचान नहीं पाती, बेचारे मृत लोग। मेरा तुम्हें यह बताना गलत था और अब मैं बहुत दुखी हूं और ज्यादा बात नहीं कर सकती। अच्छा, अब चलती हूं। माय डियर लूसी, मैं तुम्हें दिल से चुंबन प्रेषित करती हूं। मुझे दीर्घायु हो। तुम्हारी जेनी।